तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः प्रसादे सर्वदुःखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेत्थो या सुबुद्धि परिवृतिष्ठते। प्रसन्नता हिंदी में खुशी को प्रसन्नता बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में शुद्ध अंतःकरण को, शुद्ध मन को, शांत मन को प्रसन्न बोलते हैं। खुशी को प्रसन्नता बोलते हैं लौकिक भाषा में, किन शास्त्रीय भाषा में शांत मन, शुद्ध मन और शांत मन को बोलते प्रसन्न। प्रसादे सर्वदुःखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेत्सो यासु बुद्धि परि अवितिष्ठते। तो प्रसन्न चेत्सा जैसे शांत जल हो और निर्मल जल हो तो उसमें अपना मुंह देखता है, जैसे शांत मन और निर्मल मन हो तो उसमें परमात्मा सुख झलकता है और बुद्धि उसमें प्रतिष्ठित होती है। चित्त की प्रसन्नता अर्थात चित्त शांत और शुद्ध, ये बड़े तपस्या का फल है। ध्यान के समान कोई तप नहीं, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कुछ समय बैठकर ध्यान करें तो मन की मलिनता मिटे, बुद्धि के दोषों को देखने की कला आए। राग द्वेष मति के धर्म, जहां राग होगा वहां पक्षपात होगा, जहां द्वेष होगा वहां नाहक की कुड़न होगी और सारा संसार राग द्वेष की रस्सी से घसीटा जा रहा है। सारे जो दुख हैं राग द्वेष मूलक हैं, सारी जो परेशानी और मुसीबतें हैं वो राग द्वेष मूलक। विदुषा नाम किम लक्षणम, बुद्धिमान श्रेष्ठ पुरुषों का क्या लक्षण है? अदृढ़ राग द्वेष, अत्यंत मूड है, अत्यंत तुच्छ अंतःकरण है, तो उसका राग द्वेष होगा लोहे पे लकीर जैसा। कोई चीज खाली देख ली, मजा आ गया, बस उसके बिना नहीं रह जाएगा। अथवा किसी ने कुछ कह दिया तो गांठ बांध ली, दृढ़ राग द्वेष, एकदम फोर्थ क्लास चित्त, दृढ़ राग द्वेष। उससे कुछ अच्छा अंतकरण होगा तो जैसे मिट्टी में लकीर, धरती पे लकीर, ऐसा राग द्वेष। उससे कुछ साधक अंतकरण होगा तो बालू पे लकीर, और जब वो सिद्ध बुद्धि स्थित हो जाती परमात्मा तो जैसे बहते पानी में लकीर। संत के जीवन में भी राग द्वेष देखेगा लेकिन बहते पानी में लकीर जैसा, साधक के जीवन में राग द्वेष दिखेगा बालू पर लकीर जैसा, निगुरेप के जीवन में राग द्वेष दिखेगा तो मिट्टी पे लकीर जैसा, लेकिन अत्यंत छोटे दिल वाले पर राग द्वेष दिखेगा तो लोहे के पर लकीर। छोटी छोटी बात में खून अमर की कर देंगे, कुछ हो गया तो 10-10 साल घेर बांध देंगे, जेल सी रखेंगे। जो भी दुख है वो प्रज्ञा के अपराध से आते, कुछ प्रकृति के उथल पाथल से आते, कुछ वातावरण से आते। अब वातावरण को, प्रकृति को, ईश्वर को आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसमें दुख में दुखी होकर डूब मरना और सुख में सुखी होकर उसमें आसक्त होना या न होना, ये अपने हाथ की बात है। जो अपने हाथ की बात है वो कर लो, तो बाकी का जैसा भी है आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। सारी धरती को चमड़े से ढकना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, अपने पैरों को चप्पल से ढक लेना तुम्हारे हाथ की बात है। पगमा जोड़ा हो तो आखी धरती भले न काटा हो आपने सु, पर आखी धरती ने तुम्हें ढाकी मुको, पर पग उगाड़ा हो तो क्या एक आक्रो भागी जाए, कहीं कंकड़ लग जाएगा। ऐसे अपनी बुद्धि को ज्ञान से आलोकित कर लो, अपनी मति को ज्ञान का कवर चढ़ा दे। हर रोज हमारी बुद्धि उस परमात्मा में डूबती है, लेकिन ऐसे कि स्त्री तो कई घूमते घूमते जब पति थकी तो पति के बिस्तर पर सोई, जगी तो पराया घर भगी, थकी तो आई और जगी तो भगी, तो उस स्त्री को क्या बोलोगे? पतिव्रता बोलोगे? सच्ची औरत बोलोगे? तो ऐसे ही बुद्धि इधर उधर उधर थक के फिर सो जाती तो आत्मा के नजीक आती, कि जब जगती है तो संसार में भागती रात को, तो पति की पहचान ही नहीं उसको। जैसे पति को पहचानती नहीं हो वो पत्नी, पत्नी होते हुए भी पत्नी नहीं है, ऐसे ही जो बुद्धि परमात्मा को पहचानती नहीं वो बुद्धि होते हुए बुद्धि नहीं है। पेट भरने वाली बुद्धि तो मच्छर के पास भी, घोड़े गधे के पास भी है। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, परमात्मा में प्रतिष्ठित होती। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा सुख स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, और परमात्मा प्रकृति से पार है। तो ये बुद्धि जब प्रकृति की चीजों में भटकती है तो राग द्वेष होता है, और मन शांत होता है तो बुद्धि को प्रकृति में भटकना नहीं होता, तो बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती, स्थिर हो जाती। जैसे बिलोरी कांच हिलता है तो सूर्य की एनर्जी नहीं प्रकट कर सकता, और बिलोरी कांच शांत है तो सूर्य की दाहक शक्ति प्रकट कर देता है। ऐसे ही मन स्वच्छ शांत है तो बुद्धि स्थिर हो जाती, बुद्धि स्थिर हो जाती तो भगवत शक्ति भगवता। बाहर चाहे कितना भी दुख का निमित्त हो, एक तो दुख का निमित्त से दुख होता है, दूसरा मैं दुखी हूं ऐसा सोचने से दुख होता है, तीसरा दुखाकार वृत्ति से दुख होता है, कभी कभी दुख के निमित्त से भी दुखाकार वृत्ति न बनी तो दुख नहीं होगा। बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है, उसको ठोकर लगी तो दुख का निमित्त तो हुआ लेकिन दुखाकार वृत्ति नहीं हुई, तो हंसता है, ओ मतोड़ा मल गया है, है हो गया है, ओ कबूतर चला गया। उसकी माँ बोल देख ले कबूतर, तो दुखाकार वृत्ति बनने के पहले माँ कबूतर आकार वृत्ति बना लेती, वो दुखी नहीं होता। तो दुख का निमित्त होते हुए भी वृत्ति नहीं होती तो दुखी नहीं होता, दुख का निमित्त होते हुए भी अहम दुखी ये नहीं होता तो दुख नहीं होता। दुख का निमित्त होते हुए भी डॉक्टर एक गोली खिला देता है, एक इंजेक्शन मार देता है तो मैं दुखी हूँ ये बात भूल जाता है तो दुख नहीं होता। लेकिन दुख निवृत्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, परमानंद की प्राप्ति, दुख होते हुए भी जहाँ दुख टच नहीं करता वो मैं हूँ, ऐसा ज्ञान जरूरी है। कोई दुख नहीं है तो बिस्तर पे पड़े पड़े करवट लेता है, कोई दुख नहीं है लेकिन परमानंद की प्राप्ति नहीं तो आलस्य होके फिर बीमार हो जाएगा, दुख पैदा कर लेगा। मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं फिर भी मेंटली दुखाकार वृत्ति बना लेगा, और हजार दुख है, हजार चिंताएं हैं, हजार प्रॉब्लम है, लेकिन ज्ञान है कि दुख प्रॉब्लम ये मन की वृत्ति है, अहम की वृत्ति है, बाहर का निमित्त है, प्रकृति में है, मुझ आत्मा में मेरे सोल में कोई दुख सुख नहीं है, वो आदमी मौज में रहेगा। कृष्ण के जीवन में, मोहम्मद के जीवन में और उपदेशकों के जीवन में कई प्रॉब्लम आते लेकिन दुख में दुखी नहीं होते, सुख में आसक्त नहीं होते। दृढ़ निश्चय था वो जो मीरा ने घोड़ा लोगों को समझाया, पर मीरा के नहीं, महल ने मारी मारे नहीं जोई है, हूं तो जंगल नी झूपड़ी मारा हूं, मारी माँ मारू मने लाख्यू फकीरी माँ, भले त्या मने रूखो रोटलो मलशे हूं त्या खाईश, आ तो अत्यारे बधु सारू सारू लागे छे, छेवटनी जिंदगी बेकार, त्या शुरुआत में जरा काठू काठू लागे लेकिन आखिरी जिंदगी बढ़िया होती। अध्यात्म जगत में शुरू शुरू में संसार में सुविधा दिखती है, और आश्रम में इधर उधर जरा तपस्या में कठिनाई लगती, लेकिन वो कठिनाई भी अंत में अमृतमय सुख देती है, और संसार की सुविधा अंत में जहर से भी ज्यादा दुख देती है। प्रज्ञा को, बुद्धि को ईश्वर में स्थिर करें, आत्मा में स्थिर करें। कैसे हो कि प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसाद से सारे दुखों का अंत होता। आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, मानसिक दुख, ये सब प्रसाद से आप पर असर नहीं डालेंगे। वो घड़ी होती ना वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ एंड सो इन सॉफ प्रूफ, वो सत्संग और साधना के द्वारा तुम प्रॉब्लम प्रूफ हो जाओगे। प्रॉब्लम तो संसार के होंगे लेकिन तुमको टच नहीं करेंगे। जैसे सूर्य को उदय नहीं लगती, ऐसे ही संसार की घुन साक्षी के दीपक से अथवा ब्रह्म ज्ञान के सूर्य से संसार की घुन का प्रभाव ही छू हो जाता है। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण। अध्यात्म ज्ञान की कमी के कारण ही सारे दुख, सारी बेचैनी, सारे संघर्ष, सारी अशांति, सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत्तो अन्यथा। आत्मज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ को समझना, तत्व ज्ञान के अर्थ को समझना, यह ज्ञान है। और इससे विपरीत है वह अज्ञान है। खंड खंड को समझना ही अज्ञान है, लेकिन खंड खंड में जो अखंड छुपा है, एक एक में आसक्त होने की अपेक्षा अनेक में जो एक है उसको जानना, फिर न पकड़ना है न छोड़ना है, तो फिर महाराज खाएंगे क्या, कमाएंगे? और खाना कमाना स्वाभाविक होता रहेगा। जरा जरा बात पे जो हृदय घबरा जाता है, कुड़ता है, कुछ कर्म करने से पाप लगता है, कुछ कर्म करने से पुण्य लगता है, पुण्य की जंजीरें स्वर्ग में ले घसीट के ले जाती है, पाप की जंजीरें नरक में घसीट के ले जाती है, फिर वो पूरा होता है तो विधि की जंजीरें उठाकर किसी गर्भ में फेंक देती है। ये सब तत्व ज्ञान के अभाव के कारण होता है। जैसे सपना देखा, सपने में आप सेठ बन गए, पैसे बहुत हो गए, इनकम टैक्स का टेंशन हो गया और दरोड़ा पड़ा, आप घबराए, बीमार हुए, आप घबराए, बेटा लोफर हो गया, आप दुखी हुए, लेकिन आंख खुली तो देखा कि बेटा भी मेरी चेतना थी, इनकम टैक्स वाला भी मेरी चेतना थी, रुपए कमाए वो भी मेरी चेतना थी, और रुपए ले गए इनकम टैक्स वाले सपने में तो भी मैं ही था। आंख खोलते ही सपने के सुख दुख छू हो जाएंगे। ऐसे ही तत्व ज्ञान होते ही इस संसार के सुख दुख छू हो जाएंगे, अपना ज्ञान प्रकाश में रहेगा। भगवान शिव को ये तत्व ज्ञान का आनंद है, ध्यान करते करते तत्व में टिके हुए। भगवान विष्णु क्षीर सागर में इसी तत्व स्वरूप में शांत। भगवान ब्रह्मा जी इसी तत्व ज्ञान में समाधिस्थ रहते और फिर संकल्प से सृष्टि बनाने का सामर्थ्य आता है। आधा घंटा सुबह, दोपहर, शाम को थोड़े दिन इस तत्व ज्ञान में शांत हो जाओ तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, समझ बढ़ जाती है, सुख बढ़ जाता है, योग्यता बढ़ जाती है, नित्य नवीन ज्ञान उभरता है। जो तत्व ज्ञान आत्म ज्ञान के तरफ है उसको ज्ञान पाने के लिए और कोई छोटी मोटी किताबें रटनी नहीं पड़ती, उसका नित्य नवीन ज्ञान उभरता रहता है। उसको खुशी के लिए चिकन पार्टी, यहाँ डिस्को डांस, यहाँ पॉप संगीत आदि की गुलामी नहीं करनी पड़ती, उसका सुख अपने आप झलकता है। उसको आरोग्य के लिए और टॉनिक नहीं लेनी पड़ती, उसका नित्य नवीन सुख है। उसको ज्ञान पाने के लिए और कोई छोटी मोटी किताबें रटनी नहीं पड़ती, उसका नित्य नवीन ज्ञान उभरता रहता है। उसको खुशी के लिए चिकन पार्टी, यहाँ डिस्को डांस, यहाँ पॉप संगीत आदि की गुलामी नहीं करनी पड़ती, उसका सुख अपने आप छलकता है। उसको आरोग्य के लिए और टॉनिक के नहीं लेनी पड़ती, उसका नित्य नवीन सुख उसके कण कण में आरोग्यता उभारता है। ये कारण था कि प्राचीन काल में लोग अध्यात्म ज्ञान में थे तो स्वस्थ भी रहते थे, दीर्घजीवी भी रहते थे, प्रसन्न भी रहते थे, ईमानदार भी रहते थे। अभी कितनी बेईमानी करते, कितनी खुशामत करते, कितना कुछ करते, फिर भी देखो तो जीवन में कोई बरकत नहीं। बहिर्मुख ज्यादा हो गए, तत्व ज्ञान से विपरीत हो गए, अज्ञान बढ़ गया। मैं फलानी जाति का हूँ, मैं फलाने धर्म का हूँ, मुझे ये मिले तब सुखी हो जाऊंगा, इसको हटाऊंगा तब सुखी होऊंगा, ये मर जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये जन्म जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तत्व में न मौत है न जन्म है, न पाना है न छोड़ना है, तत्व तो ज्यों का त्यों है और वो नित्य है और सदा है, सर्वत्र है और सबका अपना आपा है। प्राइम मिनिस्टर की सीट सबकी अपनी नहीं है, केवल प्राइम मिनिस्टर की हुई। सेठ की गद्दी सेठ की हो गई, पत्नी के गहने पत्नी के ही हो गए, पति क्या पहनेगा वो। लेकिन तत्व ज्ञान तो सबका है, वैसे का वैसा। तो आत्मज्ञान के सिवाय दूसरे किसी चीज का ज्ञान होगा तो या तो आकर्षण होगा या तो विकर्षण होगा, शांति नहीं मिलेगी। तत्व ज्ञान में परम शांति, लब्ध्वा ज्ञानम परम शांति, वो ज्ञान उपलब्ध होने से परम शांति। लब्ध्वा ज्ञानम परम शांति मचिरेणादि गच्छति, यदि ज्ञाना तदि मोक्षा, जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय मुक्ति। ऐसा नहीं कि मरने के बाद मुक्ति होगी, कोई देवदूत आएगा विमान में बिठा के ले जाएगा तो स्वर्ग का सुख मिलेगा फिर गिरा देगा। तत्व ज्ञान को जानने वालों ने तो स्वर्ग के सुख को भी तुच्छ गिना, ऐसी भारतीय संस्कृति है। कितना धन मिल गया आखिर क्या, या तो इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे या तो जिनको उधारी दी गए ले जाएंगे, अथवा तो अपनी तिजोरी में रखकर मर जाएंगे और क्या होगा। अधिक दुकानें होगी तो यहीं छोड़ के मरेंगे। लेकिन तत्व ज्ञान ठीक से हो गया तो न कोई चुरा के ले जा सकता है, न उग्राणी डूब सकती है। तत्व ज्ञान पूर्ण है, इसीलिए नानक कहते हैं पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाए पूरे के गुण का। बॉडी का ज्ञान डॉक्टर लोगों को कुछ हिस्से का होता है, समय पाकर कुछ भूल जाते, कुछ नए आविष्कार होते, नए नए बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, नई नई दवाइयां होती है, पुराना पढ़ा वो भूल जाना पड़ता, नया सीखना पड़ता। लेकिन तत्व ज्ञान में पुराना तत्व ज्ञान होता ही नहीं, नित्य नवा। जैसे सूर्य है तो पुराना, फिर भी रोज सुबह देखो तो नित्य नया, ऐसे ज्ञान तो अनादि है। लेकिन अनादि भी है अनंत भी है, जगत की वस्तु सादी है, पैदा होती है और अंत हो जाती। ज्ञान अनादि है अनंत है, वही ज्ञान स्वरूप जो व्यापा है, जैसे आकाश सर्वत्र व्यापा है, आकाश से भी हजार गुना सूक्ष्म वो चैतन्य परमात्मा ज्ञान स्वरूप व्यापा है। इसलिए बैक्टीरिया में भी वो ज्ञान देता है कि हमारी जात के ही पराए, ये खाना चाहिए, इधर से भागना चाहिए, बैक्टीरिया भी जानते। बैक्टीरिया के अंदर भी वो कितना बारीक बैक्टीरिया, उनके अंदर भी वो ज्ञान सत्ता है, अपने बॉडी के अनुकूल ट्राई करते हो, अपने बॉडी के प्रतिकूल होता है उधर से हटते बैक्टीरिया भी। तो वो तत्व ज्ञान के लिए जो प्रयत्न करना वह बुद्धिमत्ता है, और उस तत्व ज्ञान को छोड़कर दूसरी चीजें पाने और छोड़ने में लगना ये बेवकूफी है कृष्ण की दृष्टि से, अज्ञान। और वो तत्व ज्ञान हो जाए तो बाकी के ज्ञान इजी हो जाएंगे, और वो तत्व ज्ञान नहीं तो बाकी के ज्ञान पढ़ते जाओ और भूलते जाओ और सिर खपाओ हो जाते। ऐसा नहीं कि अभी रिसर्च किया और विज्ञान ने और बहुत आगे बढ़े, इससे भी कई बार कितना आगे बढ़े थे। धरती का राजा स्वर्ग के देवताओं को हेल्प करने के लिए चले जाते थे। खटवांग राजा को इंद्र ने प्रार्थना किया कि आप हमारे सेनापति बनिए। आओ खटवांग राजा सेनापति बने देवताओं के, और बराबर दैत्यों से जूझे। वर्षों तक युद्ध चले, विजय हुए। देवताओं ने बोला वरदान मांगो। मुचकुंद राजा से भी ऐसे ही कहा वरदान मांगो। मुचकुंद ने कहा कि मैं बहुत लड़ाई करते करते थका हूं, मेरे को वरदान दो कि मैं बस गहरी नींद सो जाऊं, और मुझे कोई नींद में से जगाए तो उस पर नजर पड़ जाए तो जल के खाक हो जाए। तो भागवत में ये कथाएं आती। खटवांग राजा बोले वरदान मांग लो। बोले वरदान मांगू, क्या मांगू, मेरी आयुष्य कितनी है? बोले आयुष्य तो दो घड़ी है। बोले दो घड़ी में क्या मांगू और क्या भोगूंगा, तो सार क्या है? बोले सार तो तत्व ज्ञान है, दो घड़ी में तत्व ज्ञान पाके मुक्त हो गए। कोई चीज पाके तो मुक्त नहीं होगा? खादी की दुकान मिल जाए तो क्या मुक्ति हो जाएगी? सोने की चांदी की जवाहरात की दुकान मिल जाए तो संभालने का टेंशन, अंत में छोड़ के मरना ये पक्की बात है। डिग्री मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? जिनके पास डिग्री है, जो डिग्री दे रहे हैं वो क्या सब दुखों से पार हो गए? डिग्री देने वाले भी सब दुखों से पार नहीं हुए, सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। तो जो डिग्री दे रहे हैं जिन उनके सब दुख नहीं मिटे तो तुम्हारे कैसे मिट जाएंगे? सब दुखों को मिटाने का एक ही मार्ग है, भगवान बोलते अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व ज्ञान एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम्। एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतो अन्यथा अज्ञानम् यज्यतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, दिखे अनेक लेकिन उसको देखने वाला एक है, सुनाई अनेक पड़ता लेकिन सुनने वाला मेरा चैतन्य एक है, इसके नित्य स्मरण रखे। स्वाद अनेक लेकिन स्वाद को जानने वाला मैं एक। दुख अनेक सुख अनेक लेकिन उसका अनुभव करने वाला अनेक है क्या? एक है। जैसे एक देह में दुख सुख का अनुभव करने वाला एक ही है, ऐसे सब देहों में वो एक का एक है। जैसे एक घड़े में आकाश वो है, वैसे सब घड़ों में आकाश वही का वही है। एक घड़े में जो चंद्रमा है, सब घड़े में चंद्रमा वही का वही है। ऐसे एक हृदय में जो चैतन्य चमक रहा है, सब हृदय में वही का वही है। सब गत मेरा साईया, सब गत खाली घटना कोई, बलिहारी वो घट की बलिहारी, जागत प्रगट होई कबीरा पनिहारी अनेक पनिहारी, न्यारे न्यारे बर्तनों में न्यारे, पानी एक का एक साहिब तेरी साहिबी, साहिब घट घट रही समाए, जैसे मेंदी बीच में लाली रही छुपाए, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, जित देखा तित लाल, लाली देखन में गई, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। तो दुनिया को देखेंगे तो या पाने की वृत्ति होगी या तो छोड़ने की। लेकिन उस लाली को देखोगे तो तुम स्वयं ही अपने को पाओगे, तो वो लाल तो मैं ही था। फिर न पाना है न छोड़ना है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी शाही ठाट से, नवाबी ठाट से जीते थे। बहुत कुछ सामग्री सामान उनके पास था। उस जमाने में बढ़िया एक स्विमिंग पूल और एक बाग बगीचा वाला हवेली महल में रहते। फिर भी वो बुद्धिमान व्यक्ति ने देखा कि आखिर कब तक ये तत्व ज्ञान के दर्शन अर्थ सूफी फकीरों की किताबें हस्तलिखित लिपियां मंगाते पढ़ते अध्ययन करते, उसमें से जो अच्छा लगता अंडरलाइन कर देते। ऐसा करके कोई सैकड़ों किताबों का सूफी तात्विक धार्मिक उपासक ये देखा तो उस नतीजे पे आए कि बिना गुरु की कृपा के ताला नहीं खुलता। तो मन में उनको था कि कोई समर्थ गुरु मिल जाए। और वो जलालुद्दीन रूमी खुद भी बुद्धिमान थे, सब भोग सामग्री थी, अकल थी, सबकी नश्वरता देखते थे। तो जो भी कोई साधु संत मुल्ला मौलवी संसार की आसक्ति वाला मिले तो उसके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं होगी। सीधी बात है, अपने से ऊंचे के प्रति श्रद्धा होती है। आपका चपरासी आपको कितना भी उपदेश दे तो उसकी क्या फैली, तो दो पैसे की तो बीड़ी फूंकता है। सेल्समैन आपको ब्रह्मज्ञान का उपदेश देने लग जाए तो उसकी क्या फैली, सेठ जी सब में ये है वो है, लीजिए कपड़ा लीजिए। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी जैसे तैसे के आगे उनका दिल नहीं झुकता था, लेकिन मन में ख्वाहिश थी कि कोई मिल जाए पहुंचाओ फकीर। विल विल फाइंड ए वे, जा चाह वहां रहा। तो एक सुबह को अपना स्विमिंग पूल के पास ठंडी लहरियों के बाद वो जो किताबों में अंडरलाइनिंग की थी वो उतार कर संकलन कर रहे थे। कुछ किताब एक लिख रहे थे अपनी, इधर से उधर से उधर से सूचनाएं करती। वो लिखने की जो कलम थी उसकी स्याही खत्म हो गई, स्याही लेने को अंदर गए। अंदर गए तो एक अलमस्त सर्वत्र अपने आप को देखने जानने वाला तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम में जो सफल हुए ऐसे एक महापुरुष समस्त बेज वो आए। और वो जो हस्तलिखित लिपियां थी वो सारी उठा के पानी में फेंक दी। मुझे लालुद्दीन रूमी जब स्याही लेकर आए, देखा कि मेरे सारी संकलन की हुई किताब, कोई अफगानिस्तान से मंगाए, कोई ईरान से मंगाए, कोई कहीं से मंगाए, कोई किसी सूफी की थी, कोई किसी त्यागी की थी, किसी जति की जोगी की थी, ये मेरी किताबें सब कहां चली गई। तो समस्त भेजते हैं भवों के इशारे से, आंखों के इशारे से आके वो पड़ी पानी में नीचे पड़ी। अरे तुमने तो मेरा सब नाश कर दिया, कितनी महंगी महंगी किताबें थी, अलभ्य किताबें थी, कोई कहीं से कहीं कहीं से, कोई अफगानिस्तान से, कोई वहीं से, कोई ईरान से, कोई कहीं से, कोई कई फकीर सी, ओ तुमने मेरा सब नष्ट कर दिया, मेरा सर्वनाश कर दिया। बोले सर्व तो वो एक है, ये सर्व थोड़े है, इसी को तू सर्व मानता तू, तेरे को लाए देता हूँ। समस्त बेज ने जंप मारा स्विमिंग पूल में और वो किताबें उठा के दे दी। तो उनका शरीर तो गीला लेकिन हस्तलिखित प्रतियां जो कि त्यों सूखी। उस महापुरुष ने यौगिक संकल्प किया। मौलाना जलालुद्दीन ने जान लिया कि जिस महापुरुष को समर्थकों में खोज रहा था वो यह पैर पकड़ लिए और उपदेश की प्रार्थना किया। तो समस्त वेद के वो शिष्य हुए। और जब तत्वज्ञान का उपदेश मिला मौलाना जलालुद्दीन रूमी पात्र था तत्वज्ञान समझने की, उसकी योग्यता थी, वो लग गए। लग गए जब उनको तत्व का अनुभव हुआ तो उन्होंने कलम की। उसका गुजराती अनुवाद स्वामी माधव तीर्थ ने किया आज से 35 साल पहले। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की पुस्तक का अनुवाद गुजराती भाषा में हुआ। तो रोमी लिखते हैं कि अगर तुम पत्थर हो तो महापुरुष के संपर्क से तुम मोती बन जाओगे। 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं दूर होता। 2 क्षण संत समागम से हृदय का अज्ञान दूर हो जाता है। ये भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 84वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में कहा। वही बात मौलाना जलालुद्दीन रोमी ने अपनी भाषा में कही, जो 5,222 वर्ष पहले कृष्ण ने कहा है भागवत में, वो मौलाना जलालुद्दीन के हृदय से भी वो बात आई। 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता। 2 घड़ी साधु संग से हृदय का अज्ञान मिटता है। जल से भरे हुए जलाशय में तीर्थ बुद्धि से स्नान करना, लोहे से पित्तल चांदी या पत्थर से बनी हुई मूर्तियों में भगवत बुद्धि करना, हाड़ मास के शरीर को मैं मानना और शरीर से पैदा हुए बच्चों को मेरा मानना, और महापुरुष में जिनकी पूज्य बुद्धि नहीं है वे साक्षात गोखर है। गोखर माना गधा, मिस डोंकी। वो मजूरी मजूरी उनके हाथ लगती है। इसलिए तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, तत्ववेता गुरुओं की कृपा। कृष्ण जिसके साथ है ऐसा अर्जुन भी किम कर्तव्य मूड होकर दुखी हो रहे थे। जब तत्व ज्ञान मिला तो अर्जुन का दुख दूर हो गया। हनुमान के पास अष्ट सिद्धि 9 निधियां थी, काया बदलने का योग बल भी था, दूसरे के मन की बात जानना और दूसरे को ठीक पहचानना, ये हनुमान जी के दाएं हाथ का खेल था। ऐसा हनुमान जी भी अनकंडीशनल सरेंडर हो गए राम जी के चरणों में। तत्व ज्ञान की कमी थी, अष्ट सिद्धियां थी, लेकिन जो राम के पास तत्व ज्ञान था वो अनुभव हनुमान के पास नहीं था। हनुमान ने दिलो जान से सेवा की और जब उपहार में कीमती मोतियों का हार राम जी को भेंट मिला था, वो सबसे बढ़िया चीज हनुमान को दी, तो हनुमान जी तोड़ तोड़ के देख रहे थे। इसमें तत्व ज्ञान ये है, ये हीरों की मालाओं से तत्व ज्ञान तो नहीं होता, राम के स्वरूप का तो पता नहीं चलता। अब हनुमान जी की ये जिज्ञासा समझ के राम जी प्रसन्न हुए और राम जी कहते कह हनुमंत प्रति उपकार करूं का तोरा, तुमने जो सेवा की उसका मैं बदले में क्या दूं, सन्मुख हो न सके मुख मोरे। ऐसे भावपूर्ण वचन कहकर फिर राम जी ने हनुमान जी को उपनिषदों का तत्व ज्ञान सुनाया। तब हनुमान जी का आत्मानुभव प्रकट हुआ। तो राम जी ने पूछा हनुमान जी अब मैं कैसा लगता हूँ, बोले जगत दृष्टया स्वामी तुम सेवको अहम्, व्यवहार दृष्टया तुम स्वामी हो मैं सेवक हूँ, सृष्टि दृष्टया सृष्टि की दृष्टि से ईश्वरो तुम जीवो अहम्, तत्व दृष्टया सोहम तवो अहम सोहम, जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो। तो राम जी हनुमान को आलिंगन करते के राम हनुमान लोक राम लक्ष्मण जानकी तो बोलेंगे जय हनुमान की होगी, सेवा भी है तत्व ज्ञान भी है। खाली तत्व ज्ञान नहीं है, सेवा भी है। खाली सेवा नहीं, शबरी में तत्व ज्ञान भी जगा है। सेवक को स्वामी तत्ववेता को सेवा करते करते वो तत्व ज्ञान का गुण तो आएगा स्वामी का। नीच की सेवा करने से जैसे आदमी छोटा हो जाता है, ऐसे ऊंचे की सेवा करने से ऊंचा हो जाता है। नारायण नीच मतलब गरीब गुरबे की बात नहीं है, जो नीचे कर्म में लगे हैं उनके साथ सहयोग देने से आदमी खुद नीचा बन जाता है। हीन पुरुष की चाकरी से हीनता बढ़ जाती है। जैसे कलेक्टर पीउन के घर के बर्तन मांजे तो कलेक्टर का कलेक्टर प्रभाव दब जाएगा। कभी दयावश थोड़ा चलो भाई बीमार है चलो कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कलेक्टर अपना कलेक्टर पद भूलकर किसी शराबी के घर के बर्तन मांजने लग जाए। ऐसे ही तत्व रूप से तुम कलेक्टरों के कलेक्टर, हरिमन रूपी शराबी के कहने में तुम लगे हो, ये हाल हो गया है। मन वो शराबी तो कभी कभी भान भूलता, और ये तो दिन में हजारों बार भान भूलता। बीड़ी पी फूका, अनुभव हुआ कोई सार नहीं, फिर आधा घंटे के बाद फिर फूकता है। जो पति पत्नी का ये वो काम विकार भोगा, भोगने के बाद चल जाती रह जाता, अब फिर गिरेगी कि ये मन रूपी शराबी के चक्कर में आया, ये ब्रह्म रूपी कलेक्टर मन रूपी चपरासी के चक्कर में आके बैठा है ना। चाहे सौ सौ जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे, तमाशा यही है कि बार बार वही गलती और बार बार वही अच्छी चीज़ और फिर वही वाह वाह वाह। राष्ट्रीयता जातीयता परिच्छिन्नता स्त्रीत्व पुरुषत्व गरीबपना अमीरपना ये सब तत्व ज्ञान के अनादर से ही मगज में फिट हुए और दुख देते। तत्व ज्ञान हो जाए तो शहनशाहों की शहनशाही मैं ही हूँ, गरीबों में भी मैं ही हूँ, मेरे कुछ झंझट नहीं रहेगा, राग द्वेष बैश न कुछ पाने की आसक्ति होगी, न छूटने का डर लगेगा, अपने आप में मस्त। और फिर अपने आप में जो मस्त होता है तो प्रकृति और देवता उसकी सेवा में अपने आप सत्प्रेरणा कर देते लोगों को, लेकिन उसको उसकी भी जरूरत नहीं होती। एवं ब्रह्मैव जानाति तेषां देवानां बलिं विहति बलिं विहति, जो उस अपने तत्व स्वरूप को जानता है उसको देवता लोग बलिहार जाते, कुर्बान जाते देवताओं। नास्ति ब्रह्म सदानंदम इति में दुर्मति स्थिता कव गता सान जानामि यदा हम तम वपुषिता। वो ब्रह्म स्वरूप तत्व ज्ञान ब्रह्म सुख स्वरूप है, नहीं है ऐसी जो मेरी दुर्मति थी, जब तत्व ज्ञान का रस मिला तो वो दुर्मति कहाँ चली गई पता ही नहीं। श्री कृष्ण जिसका रथ चला रहे ऐसे अर्जुन को तत्व ज्ञान नहीं तो बेचारा रो रहा है, विराट रूप दर्शन किया तो भयभीत हो रहा है। आज जब श्री कृष्ण ने दिखाया विराट रूप के बाद तत्व ज्ञान का उपदेश का रंग लगा तो अर्जुन के तार नष्ट मोह स्मृति लब्ध हुआ, मेरा मोह नष्ट हो गया, उल्टा ज्ञान नाश हो गया, शुद्ध ज्ञान में मैं जग गया। शुद्ध ज्ञान है तो मैं अमर हूँ और मान रहा था कि मैं मर जाऊंगा अथवा तो ये मर जाएंगे, ये भी अमर है वास्तव में, ये हमारे है, हमारा तुम्हारा कल्पना है, एक माया है और महेश्वर है उसकी लीला है, ये हमारे कुल के हैं, ये तुम्हारे कुल के हैं, ये मोह था, सब एक माया के कुल के हैं और मायापति की चेतना से चल रहा है। रॉ मटेरियल तो सब जगह एक ही है, पांच भूत और चेतन। रॉ मटेरियल में क्या है, पंचभूत और चेतन, माया और चेतन, ये पंजाबी है कि ये अरोड़ा है, ये बरोड़ा है कि ये हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है, और हमारा रेलवे में भी उत्तर रेलवे पूर्वी रेलवे पश्चिमी रेलवे व्यवहार चलाने के लिए ठीक, बाकी रेलवे तो रेलवे। अरे कि ये पूर्वी मुलायम है, ये पश्चिमी है, ये फलाना है, ये एक तत्व में खंड 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 खंड, तत्व ज्ञान ये खंड खंड को मिटाकर तत्व ज्ञान नहीं होगा, खंड खंड दिखते हुए भी तत्व ज्ञान खंड खंड का आकर्षण विकर्षण मिटा के अखंड का दीदार करा देगा। गहने तोड़कर सुवर्ण रूपी तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा, गहने रहते हुए ही सोने का पता चल जाए। जगत को मिटाकर या आंखें बंद करके जगत का आकर्षण नहीं, जगत को देखते हुए भी जगत का आकर्षण मिट जाए। तो उन्होंने मौलाना जलालुद्दीन रोमी ने ये भजन कहीं गाया सुना गया उनका, न बन मुल्ला न बन काजी न रख रोजा न मर भूखा, न बन मुल्ला न बन काजी न रख रोजा न मर भूखा, न जा काशी न जा मक्का, न जा काशी न जा मक्का, ये काशी हमारा हिंदुओं का, मक्का हमारे मुसलमान का, मन उधर मत जा, काशी में और मक्के में सब में जो बैठा है वो अभी तुझ में भी बैठा है, अपने आप में आराम पा ले भाई। न जा काशी न जा मक्का, न बन बम्मन न बन मुल्ला, न रख रोजा न मर भूखा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म सिर पे रमाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। तस्बी तोड़ मुसल्ला फेंक, मुसल्ला तोड़ तस्बी तोड़ मुसल्ला फेंक पानी में, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। भक्त का नाश नहीं होता, वो जिस स्वर्ग के सुख को पाने के लिए बड़े बड़े कर्म करते हैं वो स्वर्ग तो मेरे भक्त को मुफ्त में मिलता है, और गहरा भक्त है तो वैकुंठ, नहीं तो उससे छोटा है तो स्वर्ग तो उसको यहीं मिलता है। जैसे जहाज की टिकट ली यहाँ से अमेरिका और लंदन उतरे, लंदन उतरे और जहाज ने काम नहीं दिया, कोई टेक्निकली खराबी कुछ भी होगी, तो लंदन में एक दिन दो दिन चार दिन अगर तुम रुकते हो तो होटल का खर्चा डिनर का खर्चा तुम्हारा नहीं होगा, वो कंपनी के हवाले। करेक्ट, माय एक्सपीरियंस श्योर। हम स्विट्जरलैंड, अमेरिका से स्विट्जरलैंड होते हुए इंडिया में आ रहे थे तो कनेक्टेड फ्लाइट में समय था तो हमको कमरा फ्री, वो डिनर की कूपन फ्री, फिर हमने डिनर की कूपन किसी को दे दी, वो बड़े खुश हुए। डिनर तो 300-400 रुपए की होती, प्लेट 500 की, हम क्या खाए, उनकी प्लेटें प्लेट है, दे दी वहाँ के चपरासी को, बड़ा खुश हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू, मेरे काम की नहीं है तेरे लिए, थैंक यू हो गया। तो कनेक्टेड फ्लाइट अगर कंपनी देने में लेट करती तो बाकी का सब ऐसे ही बॉडी हमारा चला गया, और हमको अब भगवान को पाना है तो अब दूसरा बॉडी मिले तब तक हम स्वर्ग में रहे, ऐसी रूम मिलता है ना, ऐसे एवन में रहे स्वर्ग में रहे, तो साधारण आदमी का तो स्वर्ग में रहेगा तो पुण्य खर्च होगा, लेकिन जो साधना करते करते मर गया है और स्वर्ग में रहना पड़ता है उसका पुण्य खत्म नहीं हुआ, उसको तो वैसे ही कनेक्टेड के लिए फ्री सर्विस होती है, सैकड़ों वर्ष रहे उसकी मौज है उतना रहे, फिर इच्छा हो तब मनुष्य शरीर में आएगा, और मनुष्य शरीर भी ऐसी जगह पे मिलेगा, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, गीता में आया। हिंदू धर्म कहता है कि जो अमीर हैं वो अमीर होने की उनके पास कुछ तो बुद्धि है तभी अमीर हुए ना, ऐसे तो अमीर नहीं हुए, तो बुद्धि तो आत्मा के नजीक होता है तभी बुद्धि होती है। तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, या तो पवित्र योगी के कुल या तो धनवान के घर में अपने भक्त को जन्म देता हूँ, तो अपना भक्त अपना बेटा अच्छी जगह पे भेजते हैं, अपना बेटा जहाँ भेजा जाता है तो अच्छी जगह पसंद होते हैं, तो भगवान को तो बुद्धिमान और योगी श्रीमान, पवित्र श्रीमान लोक और योगी का कुल अच्छा लगता है। हिंदू धर्म के भगवान को एलर्जी नहीं है धनाढ्यों से, जयराम जी की, श्रीमानों से उनको एलर्जी नहीं है। गीता कहती है शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामेव कुले भवति भीमताम। वो मेरा योग भ्रष्ट साधन करता करता भक्त मर गया, स्वर्ग में रहा, फिर उसकी इच्छा वो स्वर्ग का सुख भोग कर जब इच्छा होती है तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे पवित्र श्रीमानों के घर जन्म देता हूँ अथवा किसी योगी के कुल में उनको जन्म देता हूँ। संसार को चाहते चाहते अगर मर गए तो आदमी प्रेत होके भटकेगा, और भगवान को चाहते चाहते मर गए तो भी भगवान के लोक में जाएगा, श्रीमान के घर आएगा। संसार को चाहेंगे तो संसार पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा पार्ट, और वो भी छूट जाएगा, और भगवान को चाहेंगे तो भगवान मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे और कभी छूटेंगे नहीं। अभी ये घड़ी का ज्ञान हो गया, अब मैंने घड़ी छुपा दी तो इसका ज्ञान नहीं छीना तुम्हारे से, घड़ी को मैं छुपा सकता हूँ लेकिन इसका ज्ञान तुम्हारे से छीन नहीं सकता, घड़ी का ज्ञान हो गया, ये हरी घड़ी है, ये इसका एक बार ज्ञान हो गया फिर मैं भी इसका ज्ञान तुमसे छीन नहीं सकता, इसको छुपा सकता हूँ, इसका आदर्शन हो सकेगा, दूसरी बातों में लगा दूं, इसकी विस्मृति हो सकेगी लेकिन इसका अज्ञान नहीं होगा, ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप का ज्ञान हो जाए फिर आदर्शन विस्मृति हो जाए लेकिन आत्मा का अज्ञान फिर नहीं होता। ज्ञान का फिर अज्ञान नहीं बनता। घड़ी का ज्ञान हुआ, अब अज्ञान हो जाएगा क्या? मैं कसम खा के बोल दूं कि ये घड़ी नहीं है, ये है शकोरा, ये चूहा है भाई, आप मान लो मेरी बात। बोले अच्छा बापूजी मान लिया। ऊपर से कहोगे अंदर से तो आपको पता है कि ठीक है, बापूजी को पटा दिया। ज्ञान पटता नहीं, दूसरे को पटा देता है। ये जो घड़ी है ना, ये अभी तो अपन घड़ी बोलते हैं लेकिन वास्तव में ये घड़ी नहीं है, वास्तव में ये तो शकोरा है, आप मान लो। मान लिया? मान लिया। कैसे? पटाने के लिए मान लिया। सच्चाई तो ये है कि बापूजी तो भले बोले अपन हाँ भी बोलते हैं लेकिन जो है वो है। पराधीनता, जड़ता, नश्वरता, तो उससे तो कई जन्मों तक संसार की चीजें पाप आके तुम ढके आए। हर जन्म में तुमने पाया, खुश हुए, अच्छा है, घर में घर से आटलू सेट कर ली, दो आने खबर भी ना पड़े, मैं पटा ही दू। पर तू ये पटी क्यों? दारू अंतःकरण मलिन थे, बीमारी पकड़ी लेसे। अंतःकरण मजबूत होता है तो बीमारी आती तो भाग जाती, और अंतःकरण कमजोर होता है, मलिन होता है तो नई बीमारी होती तो भी पैदा हो जाती। व्यवहार शुद्धि, तो प्रवृत्ति से प्राप्त जो कुछ भी है उससे सामर्थ्य का ह्रास होता है। ध्यान से समझना, बहुत ऊंची बात है। प्रवृत्ति से प्राप्त सामर्थ्य का ह्रास होता है। वास्तव में प्राप्त कुछ नहीं होता है, दिखता है, प्रतीत होता है। मेरे को दो बंगले हैं, मेरे को दो गाड़ी है, मेरे को 10 आश्रम है, मेरे को 4 आश्रम है, मेरे को 100 आश्रम है, मेरे को 100 फैक्ट्री है। ये प्रतीत होता है, जैसे सपने में प्रतीत हुआ आंख खुली तो कुछ नहीं, ऐसे यहाँ प्रतीत हुआ और आंख बंद हुई तो कुछ नहीं। तो कोशिश करके जो मिलता है उससे तो सामर्थ्य का ह्रास होकर जीव बेचारा बूढ़ा होकर मर जाता है, ले कुछ नहीं जाता। इस बात में किसी को शंका है तो पूछ के दे। बौद्धिक सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य जो भी है वो उन्हीं चीजों में खपा कर अंत में छोड़कर मर जाता है। ये बात तो नास्तिक को भी माननी पड़ेगी, तुम तो आस्तिक हो। तो क्या करें? प्रवृत्ति ना करें? प्रवृत्ति करो, लेकिन प्रवृत्ति आवश्यकता पूर्ति तक की प्रवृत्ति। एक होती है इच्छा, दूसरी होती है आवश्यकता। जैसे पेट भरना ये आवश्यकता है, लेकिन वैरायटी का मजा लेना ये इच्छा है। पानी पीकर प्यास बुझाना आवश्यकता है, आंधी तूफान से सुरक्षित होना ये घर की आवश्यकता है। वो मिल सकता है लेकिन घर ऐसा हो वैसा हो उसमें खप जाते लोग। रामतीर्थ बोलते थे के हे मूर्ख धनवानो, हे मूर्ख बुद्धिमानो, आलीशान महल माड़ी और बंगला सजाने में अपनी बुद्धि और शक्ति का ह्रास मत करो, ये तुम्हारे साथ आने वाले नहीं है। आवश्यकताएं मत बढ़ाओ, इच्छा के गुलाम बनकर आवश्यकताएं मत बढ़ाओ, अपितु आवश्यकता जो वास्तविक में सहज में पूरी होती है उतनी प्रवृत्ति करो। जाएगी तो बचेगा समय, फालतू इच्छाएं कम हो जाएगी तो रहेगा स्वास्थ्य, फालतू इच्छाएं कम हो जाएगी तो स्वास्थ्यप्रद भोजन करोगे, स्वाद के चस्के से खाओगे तो बीमारी जल्दी आएगी, रोग जल्दी आएंगे, शक्ति का ह्रास होगा। और आवश्यकता के अनुसार खाओगे तो शक्ति का ह्रास नहीं होगा, स्वास्थ्य बना रहेगा। आइसक्रीम खा लिया, थोड़ी देर के बाद गरम गरम चाय पी, दांत आ जाएंगे हाथ में, चौकठू चढ़ी जैसे जल्दी थी। एयर कंडीशन में बड़े रहे मजे से, फिर गर्मी में आ गए। आवश्यकता, आवश्यक प्रवृत्ति तो शरीर से हो भी जाती है, बुद्धिमान से। आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, पलायनवादिता नहीं, साथ साथ में बिन जरूरी इच्छाओं के डिजायर के गुलाम बनकर खपना नहीं। इसलिए प्रवृत्ति करे तो निष्काम भाव से करे, अपने ऐश करने के लिए नहीं, मौज करने के लिए नहीं, ईश्वर प्रीति अर्थे समाज के हित के लिए कर ले तो सुख भोगने की इच्छा सुख देने की इच्छा से कट जाएगी। और जो संसार की चीजों का संपर्क करके सुख भोगने के चक्कर में आते वे ही ज्यादा दुख के शिकार बन जाते। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय और रोग न हो। भोगी होकर सब पछताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। हम गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। कोई बुद्धिमान जानेगा, कोई साधक जानेगा, कोई शुद्ध हृदय जानेगा, सब लोग नहीं जानेंगे इस बात को। तो इच्छा वासना के अधीन होकर प्रवृत्ति प्राप्त सामर्थ्य का ह्रास करती है और अपने पास कुछ नहीं रहता। प्रतीति होती है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। और वासना की तृप्ति भेद को जन्म देती है। और जहां भेद है वहां भय है, जहां भेद है वहां वासना है, जहां भेद है वहां ह्रास है। ललना कितनी भी सुंदर होगी उसको अपने आप ऊपर काम नहीं होगा। दांत कितने भी हराम जाते हो और जीव को कुचल डालते हो लेकिन उन पर क्रोध नहीं आता कि तोड़ के निकाल दे, अपना है। आपका चेहरा कितना भी भयंकर हो लेकिन आपको डर नहीं लगेगा उससे, क्योंकि अपना है। तो जहां अपना तो दिखा तो भय भी नहीं रहेगा, क्रोध भी नहीं रहेगा, काम भी नहीं रहेगा, लोभ भी नहीं रहेगा, मोह भी नहीं रहेगा। कभी ये सोचा कि चलो मैं अपने से मिलूं, दूसरे से मिलने की इच्छा होती, दूसरे से झगड़ा जाता है, दूसरे पर काम होता है, दूसरे पर क्रोध होता है, दूसरे के प्रति लोभ होता है कि इसका छीन लो, मोह भी दूसरों के प्रति होता है। तो अद्वैत तत्व ज्ञान सूफीवाद एक ऐसा है जो विकारों की जड़ काट देता है, भेदभाव की जड़ काट देता है, सबके प्रति संभाव और प्रेम उभरता है। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से हटा दो। क्या लाए थे, जो लाए लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं दिया।
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं सुख संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतुमे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। कष्ट सही
बापू कितने कष्ट सहे, जब जब तुम्हें पुकारा, जब जब तुम्हें पुकारा, दौड़ चली आई बापू जल्दी बाहर आओ।
चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुना हो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरा। हरी हरी ओ मांगी मांगना, प्रभु दी जो मोहे दो, बापू हमारे सख्त रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओम, ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
हमारे गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्री धर्मराज मंत्र का सामूहिक जप करेंगे। ओम अस्य श्री धर्मराज मंत्रस्य,
ओम अस्य श्री धर्मराज मंत्रस्य, वामदेव ऋषि,
गायत्री
छंदः,
शमन देवता, अस्माकं सद्गुरुदेवस्य, संत श्री आशारामजी महाराजस्य, उत्तम स्वास्थ्य
जपे विनियोगः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः।
ॐ क्रों ह्रीं मां वैवस्वताय धर्मराजाय
भद्रानुग्रह कृते नमः ॐ द्रौहीम् आं वैवस्वताय धर्मराजाय भद्रानुग्रह कृते नमः
ॐ क्रौं ह्रीं वैवस्वताय धर्मराजाय भद्रानुग्रह कृते नमः
वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः
ॐ क्रौं ह्रीं वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः
ॐ क्रौं ह्रीं आं वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः
ॐ क्रौं ह्रीं 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 आं वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः
ॐ क्रौं ह्रीं 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 आं वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः
ॐ क्रौं ह्रीं 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 आं वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः
ॐ क्रौं ह्रीं वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः
ॐ क्रौं ह्रीं वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः
आज 23 तारीख है, आने वाली 25 तारीख को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा, इस आश्रम में भी मनाया जाएगा और भी अपने कई आश्रमों में मनाया जाएगा। जो लोग लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, अपने आश्रमों में नजदीक आश्रमों में संपर्क करें। अहमदाबाद आश्रम में तुलसी पूजन दिवस 25 तारीख को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा। 28 तारीख को माला पूजन होगा 8 बजे से ही सुबह, फिर हवन और गौ पूजन 30 तारीख को होगा और 28 तारीख को शिविर है। शिविर का प्रारंभ होगा, माताओं बहनों के लिए महिला आश्रम में शिविर का आयोजन किया गया है 28 तारीख को। साध्वी रेखा बहन के मार्गदर्शन में अधिक जानकारी के लिए महिला आश्रम कार्यालय पर संपर्क करें। 30 तारीख को माला पूजन है। 30 तारीख को माला पूजन, हवन और गौ पूजन है। अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करें, आंखें बंद करके उसी स्थान पर ओमकार को निहारें। ओमकार को निहारते हुए गहरा श्वास, को निहारते जाएं भ्रु मध्य में। सभी सामूहिक संकल्प करते हैं कि आशाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो। हम सभी सामूहिक संकल्प करते हैं कि आशाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो। हम सभी सामूहिक संकल्प करते हैं कि आशाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो। गहरा श्वास लेकर रोकें, मन में संकल्प को दोहराएं। गुरुदेव के श्री चित्र की ओर एक टक निहारते हुए हम प्रार्थना करें। हम अपने गुरुदेव को बुलाएं। गुरुदेव की ओर निहारते हुए हम उनसे संपर्क स्थापित करें, मन ही मन उनसे बातें करें, उन्हें आने के लिए कहें। हम अपने मन की बात अपने गुरुदेव के आगे रखें। जल्दी बाहर आए। आ जाइए गुरुदेव। बापू आ जाइए, लौट आइए बापू। जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी बाहर आए। ओ ओ ओ बापू जल्दी बाहर आए। ओ बापू जल्दी बाहर आए। ओ ओ ओ बापू जल्दी बाहर आए। जल्दी बाहर आए। खूब दीन भाव से हम अपने गुरुदेव को ले आए, उन्हें बुलाए, वे हमारी सुनते हैं। हमारे लिए ही तो गुरुदेव इतना पसारा करके बैठे हैं, हमारी सुनते हैं, प्रेम पूर्वक बुलाए। हे गुरुदेव लौट आइए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। हे दयालु प्रभु आ जाइए। ओ ओ ओ बापू जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी बाहर आए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए।
जैसे जल बिन मीना
जाओ
हरि ओम। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, यह संसार अपने स्फुरण से हुआ है। जब फुरना दृढ़ हुआ तब जीव दुख पाने लगा। जैसे बालक अपनी परछाई में बैताल की कल्पना कर आप ही दुख पाता है, वैसे ही जीव अपने अहम से आप ही दुख पाता है। जब आत्मबोध होता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। राम जी, जो संसार रस से युक्त लगता है सो भावना मात्र है। जब यही भावना पलटकर आत्मा की ओर आवे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। देह इंद्रिय आदि जो आत्मा के अज्ञान से उपजे हैं और उनमें अहंकार हुआ है वह आत्म भावना से निवृत्त हो जाएगा। जैसे वर्षा काल में मेघ घने होते हैं और जब शरद काल आता है तब अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही जब बोध रूपी शरद काल आता है तब अनात्म में आत्म अभिमान रूपी मेघ नष्ट हो जाता है और परम स्वच्छता प्रकट होती है। हे राम जी, जितना जगत पिंड रूप होकर भासित होता है, जब आत्मा का साक्षात्कार होगा तब उसमें पिंड बुद्धि जाती रहेगी और सब जगत आकाश रूप हो जाएगा। जैसे शरद काल में मेघों की बहुलता जाती रहती है और सब आकाश रूप हो जाता है। हे राम जी, यह भ्रांति तब तक है जब तक जीव स्वरूप से सुषुप्त सा है। जब जागेगा तब सब जगत आकाश सा शून्य हो जाएगा। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न जगत आकाश रूप हो जाता है, राम जी, यह विकार क्षोभ और नानत्व प्रमाद से दिखते हैं। जब आत्मबोध होता है तब सब क्षोभ और विकार मिट जाते हैं। सब प्रपंच एक ही जाने से, एक हो जाने से द्वैत भाव मिट जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घृत ईंधन या मिष्ठान जो कुछ डालिए वह एक रूप हो जाता है, वैसे ही जब बोध होता है तब सब जगत एक रूप हो जाता है। जैसे नाना प्रकार के आभूषण अग्नि में डालिए तो सब सुवर्ण ही हो जाता है और भूषण की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही मन को जब आत्मबोध में डाल दिया तब जगत संज्ञा नहीं रहती, केवल परमात्म तत्व हो जाता है। हे राम जी, इंद्रियां और जगत तब तक हैं जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है। जब जागेगा तब संसार की सत्यता मिट जाएगी और इच्छा भी कोई न रहेगी। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न आता है और जब उस स्वप्न से वह जागता है तब स्वप्न के स्मरण की इच्छा नहीं करता कि वह मुझको याद आवे या उसमें मिले हुए सुख दुख या मनुष्य मुझे मिले, क्योंकि उसको सत्यता नहीं जान पड़ती तो इच्छा कैसे करे। वैसे ही जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है तब तक संसार के पदार्थों को मिथ्या नहीं जानता, उसकी इच्छा करता है। जब तुम स्वरूप ज्ञान में जागोगे तब सब पदार्थ नीरस हो जावेंगे और जब ज्ञान से जगत को मिथ्या स्वप्नवत जानोगे तब उसकी चाह भी न करोगे। हे राम जी, जीवन मुक्त की सब चेष्टाएं देखी जाती हैं, परंतु वह जगत को सत्य नहीं मानता, क्योंकि उसको आत्म अनुभव हुआ है। जैसे सूर्य की किरणों में जल देख पड़ता है, परंतु जिसने सूर्य की किरणों को जान लिया है उसको जल नहीं प्रतीत होता, किरणें ही दिखती हैं। परंतु जिसने किरणें नहीं जानी उसको जल का भ्रम होता है। दृष्टि दोनों की तुल्य है, परंतु ज्ञानवान के निश्चय में जगत जल के समान नहीं और अज्ञानी को जगत जल सा दृढ़ जान पड़ता है। हे राम जी, मन रूपी दीपक प्रज्वलित है, उसमें ज्ञान रूपी जल डालिए तो बुझ जाएगा। जब मन का निर्वाण होगा तब उस पद को प्राप्त होगे जहाँ जगत और अहंकार का अभाव है। वह न शून्य है न अशून्य, न केवल है न अकेवल, उसका उदय अस्त भी नहीं है। हे राम जी, जो पुरुष ऐसे पद को प्राप्त हुआ है वह कृतकृत्य होकर राग द्वेष से रहित परम शांत पद को प्राप्त होता है, उसका अहंकार मिट जाता है। वह केवल निर्वाच्य पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, आत्मा में जगत के पदार्थ कोई नहीं है, मन के संकल्प से भासित होते हैं। जैसे खंभे में चितेरा कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां इस खंभे में हैं, सो भी उसके निश्चय में है, खंभे में पुतलियों का अभाव है। वैसे ही मन के निश्चय में जगत है, आत्मा में कुछ नहीं बना। जिस पुरुष का मन सूक्ष्म हो गया है उसको जगत स्वप्न जान पड़ता है। जब उसने इसे स्वप्न जाना तब वह इच्छा और त्याग किसका करे। हे राम जी, जगत की तब तक प्रतीति है जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा। जब आत्म अनुभव होगा तब जगत रस से युक्त कभी न भासित होगा। जैसे धूप छाया इकट्ठी नहीं होती, वैसे ही ज्ञान और जगत इकट्ठे नहीं होते। आत्मज्ञान होने पर जगत का अभाव हो जाता है, जैसे पूर्व काल वर्तमान काल में नहीं होता, वैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। हे राम जी, यह जगत भ्रांति से भासित होता है और विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। दृष्टा दर्शन दृश्य की जो त्रिपुटी भासित होती है वह भी मिथ्या है। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में ये तीनों भासित होते हैं और जागे से इनका अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से ये भासित होते हैं और ज्ञान से इस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जैसे मनोराज्य से मन में जगत स्थित होता है, वैसे ही ये पर्वत नदियां देश काल जगत भी जानो। इससे इस जगत भ्रम को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। यह जगत भ्रांति से उदय हुआ है, विचार से नष्ट हो जाएगा और तुमको परम शांति प्राप्त होगी। हे राम जी, जिसका मन उपशम को प्राप्त हुआ है वह पुरुष मौनी है, वह निरोध पद को प्राप्त हुआ है और संसार समुद्र से तरकर कर्मों के अंत को पहुंच गया है। उसको पहाड़ नदियां आदि से युक्त संपूर्ण जगत लीन हो जाता है। अज्ञान के नष्ट होने से विद्यमान जगत भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी शांति से तृप्त है, वह ज्ञानवान निरावरण होकर स्थित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिस क्रम से बोध स्वरूप आत्मा जगत रूप होकर दिखता है वह क्रम भेद की निवृत्ति के लिए फिर मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितना जगत देख पड़ता है उसका चित्त में निश्चय होता है। यह जगत ज्ञानवान को और अज्ञानी को भी चित्त से भासित होता है। परंतु इतना भेद है कि अज्ञानी जगत को सत्य मानता है और ज्ञानवान शास्त्र युक्ति से देखकर पूर्वापर अर्थ के विचार से भ्रांति मात्र जानता है। यह जगत जिस अविद्या से है वह अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासित होता है सो कुछ है नहीं, वैसे ही अविद्या कुछ वस्तु नहीं है। जितना स्थावर जंगम जगत है सो कल्प के अंत में नष्ट हो जाता है। जैसे समुद्र से एक बूंद निकालिए तो वह नष्ट हो जाती है क्योंकि विभाग रूप है, वैसे ही माया अविद्या सत्य असत्य आदि सब संबंधों का अभाव हो जाता है क्योंकि सब शब्द जगत में है। जब जगत लीन हुआ तब शब्द कहाँ रहे, और वास्तव में न कुछ उपजा है न लीन होता है, एक ही चिराकाश। जो तुम कहो कि देह उपजती है तो तुम देह और तत्व को स्वप्नवत जानो। जो तुम कहो कि जगत प्रलय में लीन होता है इससे कुछ तो है, तो नाश उसी का होता है जो असत्य है। और जो तुम कहो कि जगत असत्य है तो फिर क्यों उपजता है, तो उपजी वस्तु भी सत्य नहीं होती। और जो तुम कहो कि महाप्रलय में चिदाकाश ही रहता है और वही जगत रूप होकर दिखता है, तो जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं हुआ, बोध मात्र ही इस प्रकार होकर भासित होता है। जैसे बीज और वृक्ष में कुछ भेद नहीं, वैसे ही जिससे जगत भासित होता है उसी का वह रूप है, कुछ उपजा नहीं। जब उपजा नहीं तो विकार और भेद कैसे हो, इससे बोध मात्र ही अपने आप में स्थित है। आत्मसत्ता कारण कार्य से रहित परम शांत रूप अपने आप में स्थित है, वही जगत रूप होकर दिखती है। देश काल पदार्थ भी सब महाप्रलय रूप है। जब महाप्रलय होता है तब ब्रह्मा पर्यंत सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का नाम भी नहीं रहता, अर्थ भी नहीं रहता, तब केवल बोध मात्र और बोध से भी रहित शेष रहता है जो परम शांत रूप है। उसमें वाणी और मन की गति नहीं, वह केवल अचेत चिन्ह मात्र सत्ता ही है, और उसी को तत्ववेत्ता अनुभव कहते हैं। और कोई उसे नहीं जान सकता, और कोई उसे नहीं जान सकता। हे राम जी, जो पुरुष अविद्या रूपी निद्रा से जागा है वह निराभास है। जो पुरुष अविद्या रूपी निद्रा से जागा है वह निराभास होता है, अर्थात चित्त से चैत्य का संबंध टूट जाता है, उसको परम प्रकाश रूप आत्मपद प्राप्त होता है, उसकी स्वभाव में स्थिति होती है और पर स्वभाव प्रकृति का अभाव हो जाता है। श्री राम जी, पर स्वभाव से भिन्न भिन्न जो कुछ जगत भासित होता था सो सब एक रूप हो जाता है। जैसे स्वप्न में सब पदार्थ भिन्न भिन्न दिखते हैं और जागे से सब एक रूप हो जाते हैं, अपना रूप ही भासित होता है, वैसे ही जब आत्मा का अनुभव होता है तब जगत अपना रूप ही प्रतीत होता है। हे राम जी, एक रूप तब भासित होता है जब और कुछ नहीं बना। जैसे स्वर्ण के भूषण अग्नि में डालिए तो अनेक भूषणों का एक पिंड हो जाता है और एक ही आकार दिखता है, वैसे ही जब बोध का अनुभव होता है तब सब एक रूप हो जाता है। हे राम जी, भूषणों के होते भी स्वर्ण ही था, इसी से सब एक रूप हो गया, वैसे ही जब बोध का अनुभव होता है तब सब एक रूप ही भासित होता है। इससे जगत के होते भी जगत आत्म रूप है, जगत है नहीं और हुए की तरह भिन्न भिन्न जान पड़ता है। जैसे सोम जल में तरंग नहीं है और भासित होते हैं तो भी जल रूप ही है, असम्यक दृष्टि से भिन्न भिन्न लगते हैं। हे राम जी, ज्ञानी को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों तुल्य है। जैसे भूषण के होते भी स्वर्ण है और भूषण के अभाव में भी स्वर्ण है, वैसे ही ज्ञानवान को देह के होते भी ब्रह्म है और देह के अभाव में भी ब्रह्म है। जो अज्ञानी है उसको नाना प्रकार का जगत फुरता है। अज्ञानी वही है जिसको मन का संबंध है। हे राम जी, यह जगत भिन्न भिन्न फुरता है, जैसे काष्ठ के खंभ में चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है, वे और को नहीं दिखते, उसी के मन में होती हैं। वैसे ही भिन्न भिन्न पदार्थ रूपी पुतलियां अज्ञानी के मन में फुरती हैं और ज्ञानवान को नहीं भासित होती। जब काष्ठ रूप आधार होता है तब चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है, परंतु आश्चर्य देखो कि मन रूपी ऐसा चितेरा है कि आकाश में पदार्थ रूपी पुतलियों की कल्पना करता है और वे बिना खोदी ही भासित होती हैं। हे राम जी, और दूसरा कुछ नहीं बना। जैसे किसी पुरुष ने कागज पर पुतली लिखी हो सो वह कागज रूप है और कुछ नहीं बने, वैसे ही यह जगत भी उसी ब्रह्म का स्वरूप है। हे राम जी, जब तुमको आत्मपद का अनुभव होगा तब जितने जगत के शब्द अर्थ हैं वे सब उसी में भासित होंगे। जैसे जिसने स्वर्ण को जाना उसको भूषण के शब्द अर्थ स्वर्ण ही भासित होते हैं, वैसे ही जब आत्मपद को जानोगे तब तुमको जगत के शब्द अर्थ आत्मा ही में देख पड़ेंगे। हे राम जी, ये जीव महासूक्ष्म रूप है और इनमें अपनी अपनी सृष्टि है। जब तक स्फुरण है तब तक सृष्टि है। जब सृष्टि का फुरना अपनी ओर आता है तब सब सृष्टि एक आत्मरूप हो जाती है। आकाश, काल, दिशा, पदार्थ सब आत्मा है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। वह अपने आप में स्थित है जो अद्वैत चिन्मात्र पद है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सब तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ दृष्टा और दृश्य का संबंध कैसे हुआ? दृष्टा और दृश्य का संबंध कैसे हुआ? काल में कालत्व, आकाश में शून्यता, वायु में स्पंदन कैसे हुआ है? जड़ में जड़ता, भूतों में भूतना, संकल्प में स्पंदन, सृष्टि में सृष्टित्व, मूर्ति में मूर्तित्व, भिन्न में भिन्नता और दृश्य में दृश्यता किससे हुई है, यह मुझसे कहिए, क्योंकि अर्ध प्रबुद्ध का बोध के निमित्त कहना योग्य है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर आदि सब प्रलय काल में जिसमें लीन होते हैं उसका नाम महाप्रलय है। हे राम जी, ऐसा जो अनंत आकाश है उस सम शुद्ध आदि अंत मध्य से भी रहित चैतन्य घन और अद्वैत है, जहां एक और दो शब्द भी नहीं है, जिसमें आकाश भी पहाड़ के समान स्थूल है और ऐसा सूक्ष्म है कि है नहीं दोनों शब्दों से रहित अपने आप में स्थित है। जैसे पाषाण का शिला कोश होता है वैसे ही वह चित्त के स्फुरण से रहित है। ऐसा अकारण परमात्म तत्व से सृष्टि का उपजना कैसे कही? जैसे आकाश अपने आप में स्थित है वैसे ही ब्रह्म अपने आप में स्थित है। हे राम जी, एक निमेश के फुरने से जो वृत्ति अनेक योजन पर्यंत जाती है उसके मध्य जो अनुभव करने वाली सत्ता है उसमें तुम स्थित होकर देखो कि जगत और उसकी उत्पत्ति कहाँ है। हे राम जी, उत्पत्ति समवाय कारण और निमित्त कारण से होती है, परंतु आत्मा निराकार अद्वैत और सन्मात्र है, न समवाय कारण है और न निमित्त कारण। आत्मा अच्युत है, अर्थात स्वरूप से कभी नहीं गिरता, तब वह समवाय कारण कैसे हो? वह निमित्त कारण भी नहीं, क्योंकि निराकार है। इससे आत्मा में जगत कुछ नहीं है, भ्रांति मात्र और अविद्या से भासित है। जो वस्तु हो नहीं और प्रत्यक्ष दिखे उसे अविद्या कृत जानिए। हे राम जी, ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। जल में जो तरंग और आवर्त उठते हैं वे जल रूप है, जल से भिन्न कुछ नहीं। जब तुम अपने आप में स्थित होगे तब जगत का शब्द अर्थ भिन्न न भासित होगा, क्योंकि कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। हे राम जी, ब्रह्म अमूर्त है, उसमें यह मूर्ति कैसे उत्पन्न हो? यह भ्रांति मात्र है। जो वस्तु कारण से उपजी हो वह सत्य होती है, और जो कारण बिना देख पड़े उसे भ्रांति मात्र जानी। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है तो उसका कोई कारण नहीं, इससे मिथ्या भ्रम से भासित होता है, वैसे ही यह जगत मिथ्या है, विचार किए से नहीं रहता। हे राम जी, आकाश काल आदि जो पदार्थ हैं, वे सब शून्य हैं। आत्मा में न उदय हुए हैं और न अस्त होते हैं, ज्यों के त्यों आत्मा ही स्थित है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।